47 नयों के माध्यम से भगवान आत्मा में विद्यमान 47 धर्मों की चर्चा श्री प्रवचन सार परमागम शास्त्र के परिशिष्ट के आधार से पूज्य गुरुदेव ने नए प्रज्ञापन में बहुत विस्तार से की है। उसी के कुछ बिंदुओं का रसास्वादन इस गुरु चिंतन शिविर में अपन कर रहे हैं। कल शाम को ज्ञान और ज्ञेय की व्यवस्था के संबंध में 3 जोड़ों की चर्चा अपन ने प्रारंभ की है, जो पेज नंबर 42 से प्रारंभ होती है। पहला जोड़ा है सर्वगत नय और असर्वगत नय, दूसरा है शून्य नय अशून्य नय, और तीसरा है ज्ञान गे अद्वैत नय और ज्ञान गे द्वैत नय। ये प्रकरण समय सार जी ग्रंथ के अथवा अन्य प्रवचन सार इत्यादि ग्रंथों में भी यदा कदा आता ही रहता है, और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से समाज में कई बातें जिनागम की ऐसी हैं जो लुप्त थीं, जिनका उद्योत उनकी वाणी के माध्यम से हुआ, जिसमें सर्वप्रथम नंबर अगर कोई विषय है तो दृष्टि का विषय, फिर उसके बाद नंबर आया स्वपर प्रकाशक का। अभी जो अव्यक्त के बोलों पर अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुना था, उसमें भी उन्होंने पर प्रकाशक स्वपर का प्रकाशक संबंधी चर्चा बहुत गहराई से की है। उस समय विकल्प आ रहा था काश अपन इसी विषय पर और आगे बढ़ते तो ज्यादा आनंद ले सकते थे। एक एक सूत्र, जैसे आप समझ लीजिए कि 114 वो कारिकाएं हैं आप्त मीमांसा में, उस पर अष्टसती यानी 800 श्लोक प्रमाण टीका अकलंक देव ने लिखी और 8000 श्लोक प्रमाण टीका विद्यानंद स्वामी ने लिखी अष्ट सहस्त्री में, इतना विस्तार होता है। और ये जो 114 कारिकाएं जो है ना, ये भी किसमें से निकली हैं, तत्वा सूत्र के मंगलाचरण में से। एक सम्यक्त के 10 भेदों में एक बीज सम्यक्त भी होता है, है? आत्मानुशासन में आते 10 तो बीज में से कितना बड़ा वट वृक्ष। ऐसे गुरुदेव के व्याख्यानों में प्राय है यदा कदा एक एक वाक्य इतना मार्मिक होता है कि उसे हम तत्वा सूत्र का मंगलाचरण माने तो अष्ट सहस्त्री जैसी टीकाएं उसकी हो सकती। ऐसी गजब की मेहमानंत बात है। खूब इस पर चर्चा स्वाध्यायी वर्ग सारा मुमुक्षु समाज भी करता है, हमारे सभी वरिष्ठ साथी कनिष्ठ साथी सभी इस पर प्रवचनों में भी चर्चा करते हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय इसमें नहीं लगाऊंगा। भाई साहब ने भी बहुत स्पष्ट कर दिया है, लेकिन विचारने की स्टाइल से एक बात मैं कहता हूं, ये सामने घड़ी है और हम घड़ी को जान रहे हैं। अब इस प्रक्रिया का अपन ऑपरेशन करें, एनालिसिस करें प्रयोगशाला में कि इसका क्या मतलब है, घड़ी कहाँ है, घड़ी में है, घड़ी का जानना कहाँ है, ज्ञान में है, जहां घड़ी है वहां जानना नहीं है, जहां जानना है वहां घड़ी नहीं है, फिर भी घड़ी को जान ले। एक जो अपने चिंतन में एक सल जैसी बैठी रहती है, वो जानना तो व्यवहार है, जानना तो व्यवहार है, उसका वास्तविक मतलब क्या है कि ज्ञान और ज्ञान ने गेय से संबंध तो बनाए नहीं, घड़ी को जान लिया उससे कोई संबंध नहीं बन गया, कोई स्वस्वामी संबंध कर्ता कर्म संबंध भोक्ता भोग संबंध व्याप्य व्यापक संबंध कोई संबंध नहीं बना, लेकिन हमें उस परिस्थिति का प्रतिपादन ज्ञान के संबंध बन गया ऐसा कह के करना पड़ता है। क्या ज्ञान ने इसको जाना तो ये ज्ञान है और वो गेय है, तो ये दो द्रव्यों में ज्ञान के संबंध बना, यही व्यवहार है। ज्ञाकार प्रणमन जो ज्ञान की योग्यता से होता है, उसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि वो ज्ञान का स्वभाव। अब उसे ज्ञाकार कहना ये एक अपेक्षा है, उसे ज्ञानाकार कहना ये एक अपेक्षा है, वो हम अपने सुप्त ज्ञान में लगाते रहे। लेकिन जैसा कि 37वीं गाथा की टीका में आया, अनिवार्य अनिवार्य है, रोका नहीं जा सकता जिसका विस्तार। तो इस तरह से ये बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन कभी कभी क्या है कि वो ज्यादा चर्चा भी, जो ज्यादा अलग अलग शब्दों का प्रयोग जो है वो विषय को उलझा देता है। आप देखिए 43 पेज पर मैं संक्षेप में इसमें जो बात कहना चाहता हूँ वो बताता हूँ। आत्मद्रव्य ज्ञान के अद्वैत नय से, यहाँ ज्ञान और ज्ञेय को अद्वैत बताया जा रहा है। अद्वैत माने एक, जुदे जुदे नहीं है। किस तरह जैसे ईंधन और अग्नि एक ही होते हैं, अग्नि ईंधन के कण कण में अग्नि व्याप्त रहती है, वो जब सुलगती है वो प्रकट होती है, वो तो पर्याय में प्रकट हो गई। जब नहीं प्रकट हुई है तो भी ईंधन के कण कण में अग्नि व्याप्त है शक्ति रूप से, वहां शक्ति की अपेक्षा है, ख्याल में आया ना। तो ईंधन और अग्नि कोई जुदे जुदे नहीं है, अन्यथा अग्नि ईंधन में से अग्नि कैसे प्रकट हो जाती। इसी तरह ज्ञान और ज्ञेय कोई जुदे जुदे नहीं है, घबराना नहीं। अब भी सुना था क्या करें, मुझे रोल ही ऐसा दिया है, है? मेरा डिपार्टमेंट ही ऐसा है। तो ये अद्वैत स्वभाव है, ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि वो ज्ञाकार प्रणमन में तन्मय होकर के प्रणमत, ज्ञाकार में, ज्ञेय में नहीं, तो भी उस ज्ञाकार को ज्ञेय नाम देकर उसे अद्वैत बोला गया। आत्मा में ऐसी योग्यता है कि वो ज्ञेयों को जानकर उनसे भिन्न रहते हुए भी ज्ञेयों को जानने वाली पर्याय अर्थात ज्ञाकार ज्ञान में तन्मय रहकर प्रण में, किस में, पर्याय में, ज्ञान पर्याय में। और ये अपने 75, 76, 77 गाथा में तो बहुत आता है, पुद्गल के ज्ञान रूप प्रण में हुआ आत्मा,
पुद्गल परिणाम ना ज्ञान।
हाँ। तो ये ज्ञान के अद्वैत धर्म है। दूसरा पॉइंट, यहाँ ज्ञाकार ज्ञान को ही उपचार से गे कहकर आत्मा को उनसे अभिन्न कहा जा रहा है। अब देखिए उसका रहस्य, भाई साहब ने वो पंक्तियां याद की थी, मैं वही बताना चाहता हूँ। इसमें तो एक पंक्ति लिखी है, ज्ञाकार ज्ञान में भी कलाकार ज्ञान है। उस ज्ञान का नाम ज्ञाकार दिया, वो कला किसकी है, वो ज्ञान की है, वो ज्ञेय की नहीं है। तो ये उसको ज्ञेय कहना ये अद्वैत धर्म का स्वरूप हो गया। वो पंक्ति में दोनों धर्मों का प्रयोग है। वो पंक्तियां ऐसी हैं, वो ओंकार में ही वाणी वाला गीत है ना, वो जो दिव्य ध्वनि के अवसर पे गाया जाता है, ज्ञेय झलकते हैं ज्ञान की कला में, तू ही तो ऐसा कलाकार है। अब ये कहां झलक रहे हैं, ज्ञान की कला में, तो अद्वैत हो गया, अद्वैत वाला प्रयोग हो गया। सृष्टि को पीता ये भी अद्वैत वाला प्रयोग हो गया, फिर भी अछूता ये द्वैत नहीं का प्रयोग। ये एक अपन को अभ्यास डालना चाहिए, निश्चय व्यवहार, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, 47 शक्ति, 47 नये, ये थोड़ा अपन इनका अभ्यास कर ले रहे। मेरे तो ऐसा विकल्प आता है, गुरु चिंतन शिविर को ही और एक्सटेंड करना चाहिए। रजनी भाई अभी अपन ने बहुत सारे विषय लिए, अब नेक्स्ट शिविर में आधे ले रहे, ख्याल में आए ना। तो इस तरह 2-3 शिविर कंटिन्यू करके इनकी चर्चा होनी चाहिए। खैर, तो जहां जहां जिनागम में, पूजाओं में, भक्तियों में, रचनाओं में, अब तो ये युग आ गया है काव्यों में, भक्तियों में तत्व भरने का, और कोई नया है ऐसी बात नहीं है, सिद्ध चक्र विधान में तो भरमार है। तो हमें वो खोजना चाहिए कि इसमें ये नए का प्रयोग हो रहा है, इसमें ये नए का प्रयोग हो रहा है, उससे वो ज्ञान की सूक्ष्मता और विशुद्धता बढ़ती है। तो सृष्टि को पीता, पी गया, लघु तत्व स्फोट में तो बहुत मिलेंगे ज्ञान गए अद्वैत नए के प्रयोग है, फिर भी अछूता, छुआ भी नहीं, तो ये कौन से धर्म का न्याय का प्रयोग हुआ? ज्ञान के द्वैत न्याय का। तो ऐसा है, ऐसे इसमें पंडित साहब की भी एक पंक्ति है, जो कुछ झलकता ज्ञान में, तो ज्ञान में झलक रहा है तो ये अद्वैत हो गया, लेकिन वो ज्ञेय नहीं है, मात्र ज्ञान है, तो ज्ञेय और ज्ञान जुदे जुदे हो गए। इसके नीचे के पैराग्राफ में आप देखें, छयों नय का बहुत सुंदर समन्वय और संक्षिप्त प्रयोग किया है। सबसे नीचे बीच में पैराग्राफ है, नए चक्र में से लिया है वो मैंने। संक्षेप में कहा जा सकता है कि ये भगवान आत्मा ज्ञेयों को जानता तो है। देखो, ये मैं व्यवहार से कह रहा हूं, ये मैं निश्चय से कह रहा हूं, न तो ऐसा विकल्प बार बार उठाया जाता है और न ऐसा वाणी में बोला जाता है, वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, वो ज्ञान में समझने की चीज है। कई दफे मैंने उदाहरण दिया है, बहुत छोटी उम्र में जब मैं प्रारंभ में सोनगढ़ गया तो अपने पंडित धन्नालाल जी का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। अपन सब ग्रुप को ही धन्नालाल जी का बहुत समागम मिलता था, गुरुदेव की सभा के बहुत सक्रिय श्रोता थे, डॉक्टर चंदू भाई के समान, वो भी बीच में से प्रश्न पूछ लेते थे गुरुदेव से, और रात्रि चर्चा में तो वो ही पूछते थे पब्लिक की, हिंदी भाषियों की तरफ से। तो हमारे मामा के गांव में करेली में एक शिविर लगा, तो मेरे भी प्रवचन वहां रखवाए, तो हमारे जो अध्यक्ष थे करेली समाज के उस समय के, वो निश्चय व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए, उनको बहुत मजा आया और बहुत ऐसा लगा उन्हें, बहुत समझ में भी आ गया। तो जो आपस की चर्चा में कोई बात करें तो वो कहें व्यवहार से, अगर सामने वाला हमें मिथ्या दृष्टि नहीं समझ ले रहे, इसका वो पूरा ध्यान रखते थे। अब एक दिन उन्हें निमंत्रण किया, बोले था कल आपको भोजन के लिए पधारना है, व्यवहार से। अब मेरी समझ में नहीं आया कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। ये तो जब तत्व का प्रतिपादन होता है तब वाणी में नए प्रयोग आवश्यक है, अन्यथा श्रोता कंफ्यूज हो जाएंगे, उनका ज्ञान अधूरा रहेगा और उनका निर्णय स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो वक्ता की ड्यूटी है कि यथा योग्य अवसरों पर वो नए प्रयोग करके बतावे, अगर प्रसंग उचित हो तो, अन्यथा प्रयोग में बार बार ये निश्चय से ये व्यवहार से, ऐसा वाणी में न प्रयोग होता है न ज्ञान में विकल्प खड़ा होता है, वो तो ज्ञान उस नए रूप परिणमत ही है। समझ में आया ना? तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि ज्ञान ज्ञेयों को, भगवान आत्मा ज्ञेयों को जानता तो है, और फिर मैं लगा दूं व्यवहार से तो गड़बड़ हो जाए, समझने की बात है। दूसरी बात ये ध्यान देने की है, जिसकी चर्चा कल भाई साहब करने वाले हैं आठवीं गाथा की, वो परमार्थ का प्रतिपादक होने से अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है, यानी ये जिनवाणी की आज्ञा है कि आप तत्व के प्रतिपादन में व्यवहार ने का प्रयोग करें। यदि आप वाणी में भी, प्रतिपादन में भी, कहने सुनने में भी व्यवहार का प्रयोग का निषेध करते हैं तो वो जिन आज्ञा का उल्लंघन है। जितना बड़ा अपराध व्यवहार को परमार्थ मानने में है, उतना ही बड़ा अपराध व्यवहार को उसके स्थान पर निषेध करने में, उसके स्थान पर,
उसके स्थान
ख्याल में आए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, यहां भी हो सकता है बहुत से नए श्रोताओं के दिमाग में ये भ्रांति घुसी हुए कि व्यवहार शब्द से ही हम बंधे हुए हैं, व्यवहार आया और हमें पीला धोती दुपट्टा दिखता है। सच कहता हूं, वो तिलक दिखता है, हम भक्ति कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, ये ही व्यवहार है। अरे भाई, अभेद वस्तु को भेद से कहना ये व्यवहार है, आत्मद्रव्य का संयोगों की अपेक्षा कथन करना ये व्यवहार है। समझ में आया? तो वो व्यवहार नहीं है, वो मोक्ष मार्ग का प्रकरण होवे तो असद्भूत व्यवहार है। कौन सा? वो भक्ति दया दान वाला, वो निश्चय व्यवहार के नियम उसमें भी लागू होते हैं, लेकिन वो मोक्ष मार्ग के प्रकरण का व्यवहार है, अन्यथा तो वो क्रिया है। टोडर मन जी ने लिखा है, प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, उसमें नए होता ही नहीं है, नए तो उसके प्ररूपण करने के अभिप्राय में होता है। लेकिन सारे देश में समझ लो कुछ अपने भी प्रतिपादन में कमजोरी रही, अस्पष्टता रही, और लोग तो विरोध करने और गलत समझने समझाने के लिए तैयार ही बैठे थे। भैया इन लोगों से बच के रहना, ये पूजा पाठ छोड़ाते हैं, ये व्यवहार को ये बताते हैं, मैंने पूजा पाठ छोड़ाते हैं। मैंने भाई साहब इसमें नए रहस्य में बहुत इसकी चर्चा की, व्यवहार हे का मतलब पूजा पाठ छोड़ना नहीं होता, व्यवहार हे का मतलब होता है व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना। ये इसमें से निकला, आत्मा गेयों को जानता तो है पर ना तो ज्ञान गेयों में आता है और ना गे ज्ञान में ही आते हैं। ये परिस्थिति तो भैया चाहे कोई माने चाहे ना माने, अज्ञानी हो के ज्ञानी हो, सबके ज्ञान की प्रक्रिया यही है, किसी का भी ज्ञान बाहर नहीं जाता। कल भी आई थी ना ये बात, उपयोग बाहर नहीं जाता। दोनों अपने अपने स्वभाव में सीमित रहने पर भी, देखो सीमित रहने पर भी, अब भजन किस पे दिया, ज्ञान जानता है और गे जानने में आते, गे जानने में आते हैं। ऐसा मतलब कि ज्ञान तो अपने घर में बैठा है, गे घुस रहे हैं अंदर, ख्याल में आए, प्रमेयत्व गुण की तरफ से, गेयत्व धर्म की तरफ से, स्वच्छत्व शक्ति की तरफ से, ऐसा बोला जाता है। क्रिया एक ही है, भाई साहब ने एक्टिव वाइस पैसिव वाइस का जो उदाहरण दिया था वो वस्तु स्थिति तो वही है, प्रक्रिया तो वही है। गेयाकार प्रणमन को ही आप कई तरह से कह सकते, ज्ञान ने जाना और गे जानने में आए, दोनों पद्धतियों से आप वो गेयाकार प्रणमन वाली जो परिस्थिति है उसको कह सकते हैं। कहने की पद्धति जिनागम में भी है, दुनिया में भी है। देखो ज्ञाता भगवान आत्मा और गे लोकालोक रूप सर्व पदार्थों का यही स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव जानने का और गेयों का स्वभाव ज्ञात होने का। ये ज्ञात होना हिंदी में कम चलता है तो लोगों को कठिन पड़ता है, गुजराती इजी पड़ता है, जणिस जाय छे, जणाय जाय छे। ज्ञाता भगवान आत्मा के उक्त स्वभाव का प्रतिपादन करना ही उक्त छह नयों का प्रयोजन है, ये पूरे छह नयों की समरी है। अब हमें अपना प्रयोजन कैसे इसमें से निकलता है, ये बहुत बढ़िया कमेंट्स है इस पे। गेयों को सहज भाव से जानना, सहज मतलब तुम ना तो जानने का आग्रह रखो ना नहीं जानने का आग्रह रखो, तुम माने कौन? जानने का आग्रह कौन रखता है? अज्ञान। नहीं जानने का आग्रह कौन रखता है? अज्ञान। और हम कौन है? हम तो निष्क्रिय तत्व हैं। अहो चित परम अकर्ता नाथ, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष। तो भी तुम माने, तुम उस प्रकार की आकुलता मत करो। तो ये एक संबोधन शैली है, उपदेश शैली है, कि ऐसे विकल्पों में उलझने से कोई फायदा नहीं। गेयों को सहज भाव से जानना, भगवान आत्मा का सहज स्वभाव है, अतः न तो हमें पर पदार्थों को जानने की आकुलता करना चाहिए और न नहीं जानने का हठ करना चाहिए। ख्याल में आए तो उसमें भी आकुलता ही खड़ी होगी, जानने वाले क्या बिगड़ गया। लघु तत्व स्फोट में एक छंद है कि सूर्य उदित होता है भाई साहब और उसमें लोकालोक प्रकाशित होते हैं, सारी दुनिया, सूर्य का क्या बिगड़ता है? नहीं नहीं नहीं, मेरी किरण उधर चली जाएगी, मैं अपनी संपत्ति उधर क्यों? अरे तेरी किरण किरण में रहती है, तू तू में रहता है, पृथ्वी पृथ्वी में रहती है, काय को घबराता है? सूर्य को कभी ऐसी आकुलता नहीं होती। ऐसा उदाहरण दिया लघु तत्व स्फोट अमृत चंद्राचार्य। इसी प्रकार से ज्ञान अगर विकसित होता है, केवल ज्ञान सूर्य रूप से प्रणमित होता है और उसमें सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंत प्रकाशित होते, ज्ञान का क्या बिगड़ता है? ऐसा लिखा है।
प्रभु तेरा क्या बिगड़ता है?
तेरा क्या बिगड़ता है? अच्छा एक बात ठीक है भैया, पर को जानने की आकुलता नहीं करना, आत्मा को जानने की आकुलता करना। उसके लिए आकुलता शब्द सही नहीं है। आत्मा को जानने की भावना होना, आत्मा को जानने की रुचि होना, जिज्ञासा होना और उसके लिए यथा योग्य अंतर बाह्य प्रयत्न होना। बाह्य प्रयत्न माने सत्संग, सत्समागम, शास्त्राभ्यास, वो भी होते ही है। जिसको आत्मा को जानने की जिज्ञासा होगी वो विषय जाल में नहीं फंसेगा, वो इस विकल्प जाल में आ जाए। और अंतरंग प्रयत्न यानी तत्व विचार, कर विचार तो काम, अंतरंग प्रयत्न तत्व विचार है और बहिरंग प्रयत्न सब समागम है। तो आत्मा को जानने की आकुलता नहीं करना चाहिए। खरेखर ऐसा जिसको श्रद्धान में प्रतीति में आ गया, उसने जान ही लिया, तभी आकुलता मिट गई उसकी, ख्याल में आए। तो आत्मा भी कोई आत्मा को जानने के प्रयत्न पूर्वक नहीं जाना जाता। ये विषय नियति अनियति वगैरह में आने वाला है, ये पांच समवाय में आने वाला है। खैर, तो नहीं जानने का भी हठ नहीं करना और जानने का आग्रह नहीं रखना। जान क्या मतलब, क्या मेरी चीज नहीं है तो मुझे उसे जानने की रुचि क्यों हो गई, समझ में आने। तो लोक में भी न्याय की बात है, पर्यायगत योग्यता अनुसार योग्य, देखो क्या शब्द लिखा, पर्यायगत योग्यता अनुसार योग्य ज्ञान में सहज भाव से ज्ञात हो जा रहे हैं, उन्हें वितराग भाव से जान लेना ही उचित है। अभी वितराग भाव भी जोड़ दिया, वितराग भाव माने ज्ञेयों से अप्रभावित रहकर, नो रिएक्शन। तीर्थंकर महावीर सर्वोदय तीर्थ पुस्तक सन 74 में प्रकाशित हुई थी, वो डॉक्टर साहब के प्रकाशन में मेरे ख्याल से पहला या दूसरी प्रकाशन था वो। भोपाल पंचकल्याण में जब गए थे तब वहां मुझे चौक के मंदिर में मिली थी। एक बहुत बढ़िया पंक्ति उसमें है कि भगवान कौन होते, भगवान का क्या स्वरूप, जाने सबको लेकिन प्रभावित न हुए, ख्याल में आया। और अप्रभावित रहकर जाने और जान कर भी अप्रभावित रहे, और अप्रभावित का मतलब नो रिएक्शन। इस लैंग्वेज में समझो ये बात, नो रिएक्शन। जैसे कोई आपके सामने कोई शर्ट का पीस रखा, पेंट का पीस रखा, कैसा है बस बढ़िया, अच्छा लगा के, अच्छे बुरे का क्या सवाल, जो जैसा है वैसा है। अच्छा बुरा ये राग द्वेष की भाषा है, ख्याल में है। स्व पर ये भेद विज्ञान की भाषा है, तो भेद ज्ञान अपना प्रयोजन होना चाहिए। तो इसलिए लिखा वितराग भाव से ज्ञान लेना ही उचित है, अन्य कुछ विकल्प करना उचित नहीं है, आकुलता का कारण। इस तरह ये 47 नयों में भी 6 नए या 3 जोड़े ये ज्ञान और ज्ञेय की व्यवस्था का बहुत सुंदर प्रतिपादन करते हैं। हमें यथा योग्य गहराई से नए प्रज्ञापन आदि ग्रंथों से, नए चक्र से भी इसका अभ्यास कर लेना चाहिए। देखो ये ऐसे तत्व अभ्यास में बहुत विशुद्धि बढ़ती, बाकी जो स्थूल स्वभाव है वो तो ठीक है, अपना उपयोग भी स्थूल रहता है। तो आलम्बन चाहिए, गीत का चाहिए, संगीत का चाहिए, भक्ति का चाहिए, इस मंदिर का चाहिए, प्रतिमा का चाहिए, ये सब अपने उपयोग की कमजोरी के नमूने। चश्मा कौन लगाता है जिसकी आंख में कमजोरी है, लकड़ी कौन लेता है जिसके पैरों में कमजोरी है। तो ये अपनी आलम्बन वाली बाह्य दशा है। लेकिन अगर तुम्हें अशुभ से बचने ही हो तो तत्व विचार से ऊंचा उत्कृष्ट स्वभाव और कोई दूसरा, खरेखर वो ही समझ लो एक अपेक्षा से मोह मंद करने में निमित्त होता है तत्व विचार। अभी 2-8 नए यानी 4 जोड़े, ये 5 समवाय के ऊपर प्रकाश डालते अपन पढ़ते हैं। पहला है नियति नए और अनियति नए। वैसे देखा जाए तो नियति शब्द 5 समवायों में काल लब्धि के लिए आया है, परंतु यहाँ काल लब्धि के अर्थ में नहीं है। यहाँ क्या है, आत्मद्रव्य नियति नय से जिसकी उष्णता नियमित, कोष्टक में नियत भी लिखा है, एक ही मात्र नहीं है कोष्टक में, नियमित है ऐसी अग्नि की भांति नियत स्वभाव रूप भाषित होता है, ज्ञान में भाषित होता है। देखो भाई, ज्ञान की स्वच्छता में जो प्रोसीजर ज्ञेयों से भिन्न रह के ज्ञेयों को जानने की स्वच्छता में झलकने की पर ज्ञेयों के मामले में है, वही प्रोसीजर स्वज्ञेय त्रिकाली ध्रुव के मामले में, ये अव्यक्त में आया ना, अनित्य नित्य का निर्णय करता है, श्रद्धा अखंड स्वभाव को प्रतीति में ले लेती है, लेकिन प्रतीति में वो द्रव्य आ नहीं जाता। आया नहीं तो प्रतीति में क्या है? प्रतीति आई, द्रव्य कहाँ आया? ये गुरुदेव के न्याय क्या गजब के है। जो ज्ञान परे आए, ज्ञान स्वभाव में ढल जाती है, जम जाती है, रम जाती है, ये सब ज्ञान पर्याय की खूबियां हैं। इसका स्वभाव से कोई लेना देना नहीं। त्रिकाली स्वभाव, उसने तो अपना मुख उसकी तरफ किया है, उसकी तरफ मुख किया है, इसलिए स्वभाव की बात सामने आ जाती है। वो तो उतनी अछूती रहती है। ये व्यक्त और अव्यक्त वाले सिद्धांत को देखा जाए, ये सॉरी भरत भाई का विषय है, वैसे वो लेने वाले हैं। ऐसा है भाई, अद्भुत चीज है। तो स्वभाव नियत है, नियत माने परमानेंट है, एक रूप है, सुनिश्चित है और नॉन चेंजेबल है। और नियत है ये आत्मा का स्वभाव माने धर्म है कि वो स्वभाव एक रूप रहे त्रिकाली। ऐसा एक नियति नाम का धर्म माने योग्यता वस्तु में। और अनियत रूप से देखा जाए तो जिसकी उष्णता नियति से नियमित नहीं है, ख्याल में आया ना, एक रूपता द्वारा जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे पानी की भांति अनियत स्वभाव रूप भाषित होता है। तो वो स्वभाव में एक रूपता ही मिलेगी, उसमें भेद खड़ा नहीं होता। अग्नि गर्म है कितनी, उसमें कम गर्म है कि ज्यादा गर्म है, ये भेद नहीं होता। चाय में शक्कर डालो तो भेद खड़ा होगा, एक गिलास चाय में आधा चम्मच डाली तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, चार चम्मच डालो तो मालूम पड़ेगी कम हो गई ज्यादा हो गई। चाय की मिठास अनियत है और शक्कर की मिठास नियत। कितनी, वो पूरी परिपूर्ण, उसमें कोई भेद का प्रश्न खड़ा नहीं होता। नए क्रमांक 26 से 33 तक अभी मैंने 26वां चालू किया है, मैं समझता हूँ शाम के सेशन तक अपन पूरे 33 तक पहुंच जाएंगे। चार नए युगलों द्वारा कार्योत्पत्ति में कारणभूत पांच समवायों का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। इस नए युगल में द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव के रूप में स्वभाव नामक समवाय का स्वरूप स्पष्ट किया गया। अनियत पना भी स्वभाव है, वो पर्यायगत स्वभाव। देखो वस्तु कैसी है, द्रव्य पर्यायात्मक, संक्षेप गुण को दोनों तरफ ले सकते हैं, गुणात्मक नहीं है ना, तो गुण द्रव्य में भी जाते हैं और पर्याय में भी जाते हैं। भेद से बोलो तो पर्याय में, अभेद से बोलो तो द्रव्य, इसलिए द्रव्य पर्यायात्मक, उसमें सब कुछ आ गया। तो जब वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है तो द्रव्य गत योग्यताएं भी अनंत पड़ी हुई है और पर्याय गत योग्यताएं भी अनंत पड़ी हुई है। तो बहुत से धर्म द्रव्यगत योग्यता को बताते हैं और बहुत से पर्यायगत माने पर्याय संबंधी, पर्यायों में रहने वाली, यानी जिनका स्वरूप पर्यायों में देखा जाता है। तो ये अनियत पना किस में देखा जाता है, पर्याय में। अग्नि की उष्णता की भांति आत्मा में ऐसी योग्यता है कि वो त्रिकाल एक रूप चैतन्य स्वभाव में ही रहे, चैतन्य मात्र, चिन्ह मात्र। देखो बात वही है लेकिन उसको देखने के एंगल जुदे जुदे हो जाते हैं तो धर्म जुदा जुदा हो जाता है। मैं गुरुदेव श्री का एक उदाहरण याद करना चाहता हूँ, ये अनंत शक्तियां कैसी पड़ी हैं, अनंत धर्म कैसे पड़े हैं। वो कहते हैं जो हीरा होता है ना, हीरा तो, हीरा तो अखंड होता है लेकिन उसमें बहुत सारे पासे होते, जरा सा इधर का इधर घुमाया तो उसकी चमक, उसकी छवि, उसका रंग कुछ अलग दिखेगा, इधर का इधर घुमाए तो कुछ दिख। वो है अखंड लेकिन उसमें पासे बहुत सारे होते, ऐसा बोलते थे। हैं 57 ये तो बैठे हैं सब हीरे के व्यापारी हैं। ऐसे चैतन्य हीरा में अनंत पासे हैं, ये उदाहरण उनके व्याख्यानों में आता है। तो अग्नि की उष्णता की भांति आत्मा में ऐसी योग्यता है कि वो त्रिकाल एक रूप चैतन्य स्वभाव में रहे। इस चैतन्य रूप रहने की योग्यता भी एक धर्म है भाई साहब, जिसका नाम नियति धर्म है। और उसको जानने वाला ज्ञान नियति न है। परम पारिणामिक भाव आत्मा का नियत स्वभाव होने से श्रद्धेय और ध्येय है। ध्येय तो है ही, ख्याल में आया, भजन श्रद्धेय ध्येय पे दिया। यदि आत्मा में ये नियत स्वभाव न होता तो क्या होता, आत्मा ही न होता, उसका सर्वथा नाश हो जाता। बिना स्वभाव के कोई वस्तु कैसे रह सकती है। अभी तीसरा पॉइंट, पानी की उष्णता के समान आत्मा में ऐसी योग्यता है कि वो पर्याय में कर्मोदय की सन्निधि में रागादि विकार रूप प्रणमन करे, इस योग्यता को अनियति धर्म कहते हैं। गजब। अब अनियति क्यों कहा, इसकी चर्चा नीचे है। इसे जानने वाला ज्ञान अनियति न है, एकमात्र परम पारिणामिक भाव ही, ये सब नए प्रज्ञापन में मिलेगा आपको, परम पारिणामिक भाव ही आत्मा का नियत स्वभाव है और औपसमिक आदि चार भाव अनियत स्वभाव रूप योग्यता से होते हैं। अनियत क्यों कहा, क्योंकि वे एक से नहीं होते। अरे वो अधिक भाव ही असंख्य प्रकार के होते, चाहे उपसम भाव असंख्य प्रकार के होते हैं, चाहे भाव में वैसा कोई भेद नहीं बनता, ख्याल में आए ना। लेकिन उसमें भी अभिभाव प्रतिषेद वगैरह का स्वरूप यथा योग्य समझने लायक होते ना, एक एक पर्याय में अनंत घट है, अनंत नृत्य है, ये वो सब। अभी पांचों समवायों की संक्षिप्त झलक इस पैराग्राफ में आपको मिलेगी, पांचों समवाय। यह अनियत स्वभाव ही, इसमें मैं सबके विचार आमंत्रित करना चाहता हूं, जितनी भी हमारी विद्वत मंडली यहाँ विराजित है उनके विचार भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, है तो सब गुरुदेव के प्रवचनों से निकाला हुआ। अनियत स्वभाव ही पांच समवायों में स्वभाव नामक समवाय जानना चाहिए, मुख्यतः उसकी। त्रिकाली स्वभाव, त्रिकाली स्वभाव सामान्य कारण है, न्याय ग्रंथों में जो त्रिकाली उपादान है उसे सामान्य आधारभूत उपादान कहते। गुरुदेव ने आज कितना बोला, वो कोई जमीन तो होनी चाहिए, जब वृक्ष है थड़ है तो नीचे उसकी आधारभूत भूमि तो होनी चाहिए, और जे ऊपर तरे छे तो जेने ऊपर तरे छे तो ते कोई वस्तु तो हो भी जोइए, कहां से निकाला साहब। ऐसा लगता है केवल ज्ञान का एक टुकड़ा ले आए उधर से, कैसी कैसी चीजें निकाली, आश्चर्यजनक बात। वो बेंसिन लिखा ना, पंचम काल का अचंबा है, जैसे वो क्या बोलते अछेरा, और कोई पंचम काल में ऐसा शायद होता होगा कि नहीं होता। कभी कभी मुझे ऐसी कल्पना होती बसंत भाई, कि अपना एक भरत क्षेत्र है ये, तो जिसमें अभी अपन बैठे हैं ये एक भरत क्षेत्र, बाकी और कितने भरत क्षेत्र हैं ढाई दीप में, चार, और ऐरावत क्षेत्र कितने हैं, पांच। तो उन सब में भी यही अवसर्पणी काल, हुंडा सर्पणी काल चल रहा है, वहां भी कोई कांजी स्वामी हुआ होगा ऐसा लगता है, और ये कल्पना बड़ी मीठी लगती है, वहां भी कोई देवलाली होगी, वहां भी कोई गुरु चिंतन शिविर चल रहा होगा। अब नाम अभय कुमार होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसी एक रूपता क्यों ना हो, ख्याल में आया। खैर, त्रिकाली स्वभाव सामान्य कारण है और क्षणिक योग्यता को या तत्समय की योग्यता रूप को समर्थ कारण कहा गया। समर्थ यानी जैसी तत्समय की योग्यता होगी वैसा कार्य होगा, और क्षणिक स्वभाव समर्थ कारण और समय आदि चार भाव कार्य हैं। एक बात पे गहराई से विचार करना, हम कहते पुरुषार्थ, तो वो पुरुषार्थ भी कार्य है कि नहीं, वो पर्याय में प्रकट होता है, किसी न किसी भाव रूप होगा। मोक्ष मार्ग के संबंध में अपन देखें तो मोक्ष छायक भाव है, तो वो पुरुषार्थ का फल है, और मोक्ष मार्ग वो औपसमिक भाव है, छायोपसमिक भाव है, ख्याल में नीचे की भूमिका है, छायक भाव है, समझ लो सम्यक दर्शन इत्यादि, तो वो भी होनहार है, वो भी कार्य है। तो वो एक समय की पर्याय में चार समवाय बैठे, उसकी क्षणिक तत्समय की योग्यता वो स्वभाव है, और उसका जो कार्य होना है तो योग्यता में से वो प्रकट बाहर आना, श्रद्धा में श्रद्धा का वीर, ज्ञान में ज्ञान का वीर, चारित्र में चारित्र का वीर, हरेक में अपनी अपनी ताकत और अपने अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करने की ताकत, आंख में देखने की ताकत, कान में सुनने की ताकत, ऐसे श्रद्धा में अपना काम करने की ताकत। तो उपसमक आदि चार भाव कार्य हैं, जिसे भवितव्य होनहार भी कह सकते हैं, भवितव्य होने योग्य कार्य। वह पर्याय त्रिकाली प्रवाह क्रम का समयवर्ती अंश होने से स्वकाल है। होनहार और स्वकाल, इन दोनों में थोड़ा फर्क है। काल का वो अंश है वो स्वकाल की बात है। खरेखर तो पर्याय का मतलब कालांश होता है, हैं? लेकिन उस पर्याय में भाव कौन सा आया, तो उपशमित क्षय उपशमित राग द्वेष पुण्य पाप मिथ्या जो भी अपन फील करते हैं वो सब कार्य है। ख्याल में होनहार और स्वकाल और उन पर्यायों की उत्पत्ति में प्रयुक्त होने वाला वीर्य, वीर शब्द तो कॉमन है लेकिन हरेक गुण में उसका स्वयं की सामर्थ्य रूप में होता है। और निमित्त वो अनुकूल बाह्य पदार्थ, एक संक्षिप्त परिभाषा, अनुकूल बाह्य पदार्थ वो निमित्त। पर्याय स्वभाव को अनियत कहने का आशय पर्यायों की परिवर्तनशीलता से है कि वो चेंज होती। अनियत माने अनिश्चित है, आगे पीछे होती हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, ये हमारे अज्ञान की महिमा है। क्या पता नहीं कब क्या हो जाए, एक पल का भरोसा नहीं है। यहां से निकलेंगे तो घर भी पहुंचेंगे कि नहीं, बीच में ही आठ फैल हो जाए, बेरा के जगाने के लिए ठीक है, ख्याल में विषय जाल से बचाने के लिए ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं है भरोसा। जिनको भरोसा, जिनके ज्ञान में सुस्पष्ट है उनका भरोसा कर ले। क्या कहा? जिनके ज्ञान में वो चीजें सुनिश्चित हैं उनका भरोसा कर लो, उनके ज्ञान का भरोसा कर लो, तो वो अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। पर्याय स्वभाव को अनियत कहने का आशय पर्यायों की परिवर्तनशीलता से है, ना कि उनके क्रम की अनिश्चितता से। अनियत लिखा ना, अनियत पर्यायों का क्रम अर्थात उनके प्रकट होने का स्वकाल तो सुनिश्चित ही है, उनमें कब कैसा परिवर्तन होगा ये भी सुनिश्चित है। इस प्रकार अनियत स्वभाव और क्रमबद्ध पर्याय, इसमें कोई विरोध नहीं। ते नियत और अनियत की चर्चा की, इसमें द्रव्य स्वभाव सुनिश्चित है, एक रूप है, और पर्याय स्वभाव अनेक रूप है, चेंज होता रहता है, परिवर्तनशील है। अब एक स्वभाव ने भी है भैया और एक अस्वभाव ने। मैं समझता हूं मेरे पास 5-7 मिनट हैं अभी, तो अपन इसका भी रसा स्वादन करते। कितने सुंदर उदाहरण दिए और क्या सुंदर ढंग से उन धर्मों का वर्णन किया है, है? ये शास्त्राभ्यास करे तो पंच परमेष्ठियों के टोले में बैठा हो मानो। अमृत चंद्र की टीकाएं पढ़ गए ऐसा लगेगा अमृत चंद्र आके चौकी पे खड़े हुए सामने बैठ के बता रहे हो। ऐसा तन्मय होकर के स्वाध्याय करने की आदत डालनी चाहिए। आत्मद्रव्य स्वभाव ने से जिनकी नोक किसी के द्वारा नहीं निकाली जाती। जंगल में देखे आचार्य ने खूब पहने कांटे, कटीली झाड़ियां होती ना, कौन उसको नोकदार करता है, वो नेचर है, कुदरत से हुई है। ऐसे पहने कांटों की भांति संस्कारों को निरर्थक करने वाला है। भोग संस्कार बिना की सुविधाएं पतन की कारण है, वो बात आने वाली है अभी, वो गलत नहीं है। ख्याल में है ना, बच्चों को मोबाइल दे दो और संस्कार मत दो, तो क्लासरूम में बैठेंगे और टीचर की मजाक के जोक पढ़ेंगे, जेठालाल के बच्चों की भांति। देखो सब समझ गए, हमारी ब्रह्मचारी ने नहीं समझी होगी। संस्कार खूब बाइक दे दो, मोबाइल दे दो, समझ में नहीं आता। कोई नेता अगर सही बात भी कह दे तो उसकी बड़ी मुसीबत हो जाती है। अपन कहते लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए तो उसकी मुसीबत हो जाए। एक छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि यहाँ इतने सड़कें अच्छी बन गई, बाइक हाथ में आ गई और वो ईयरफोन में लगा के बाइक चला रहे हैं और मोबाइल लेके चला रहे हैं, तो दुर्घटनाएं तो बढ़ेंगी। तो उसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रही सरकार, वो उन्हीं के ऊपर डाल रही। अरे दुर्घटना कौन कौन तुम्हें समझाए, वो नियम भी बना दो तो अभी पुलिस चालान करते करते थक जाएगी लेकिन लोग नहीं सुधरेंगे। अब हम अपनी रक्षा के लिए हमें ही को सुधरना है। तो सुधरना जिसमें होता है वो पर्याय वाला धर्म, नहीं सुधरना यानी चेंज नहीं होने वाला जो है वो स्वभाव वाला दरख्त पहने कांटों की भांति संस्कारों को नरक, यानी स्वभाव पर संस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इत्रकाली स्वभाव की बात है।
इसको ऐसा लें, सीख बा को दीजिए,
जाको सीख स्वभाव, वो तो पर्याय की बात है। नहीं, इसमें बुंदेलखंड की कहावत लिखी है, ये 47 पेज पे है, तीसरे पॉइंट में, जी को जोन स्वभाव जाए न जी से, नीम न मीठी होए खाओ गुड़ घी से। वो करेला कहते हैं गुजराती में, करेला बहुत पसंद है। अरे क्या करेला पसंद, प्योर करेला खाओ फिर तो बताएं। बढ़िया घी डाल दोगे, नींबू डाल दोगे, मिर्ची डाल दोगे, गुड़ डाल दोगे, मिश्री डाल देंगे, फिर कहेंगे करेला बढ़िया है। अरे करेला बढ़िया है, उसका संयोग बढ़िया है। करेले का स्वभाव नहीं बदलेगा, ख्याल में है ना। आत्मा के और जिनकी नोक, अभी दूसरा, जिनकी नोक लोहार के द्वारा संस्कार करके निकाली गई, लोहार ने प्रयत्न किया, ख्याल में है ना, ऐसे पेने बाणों की भांति संस्कारों को सार्थक करने वाला है। दोनों धर्म आत्मा में एक साथ एक समान विद्यमान है। यानी वर्तमान पर्याय की तरफ से देखा जाए तो सदगुरु उपदेश देते हैं, गुरुदेव कितना थे, जागरे जाग नाथ, ये संस्कार समझ में आया, बेचार कलाक वांचन जोइए। मुझे तो बहुत याद आती है, आज का तो वातावरण कितना बदल गया, बड़ा खेद होता है, रात्रि में भोजन करना पड़े, आवी खोड़ा आवी नौकरी आत्मार्थी ने ना हुए। मुझे कानों में गूंजते रात्रि चर्चा में स्वयं गुरुदेव ने कहा और वे मेरे अंदर टंकूत किरण हो गए, क्या करें, लेकिन सारा ग्लोबलाइजेशन ने सब सत्यानाश कर दिया। और ये सुन के भाई तुम्हारे ये आर्थिक प्रगति, ख्याल में आने जीडीपी बढ़ रही है, पैसा बढ़ेगा और कुछ संस्कार और पुष्ट होएंगे बिना संस्कारों के। आत्मा के त्रिकाली स्वभाव में ऐसी योग्यता है जिसे संस्कारों यानी प्रयत्नों द्वारा नहीं बदला जा सकता, भव्य अभव्य नहीं हो सकता, चेतन अचेतन नहीं हो सकता, समझ में आया ना। अर्थात वो संस्कारों को निरर्थक करती है, कौन, वो योग्यता, उस स्वभाव नाम का धर्म जो है उस पर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ता। अरे जड़ के लिए कितना प्रयास किया जाए कि वो चेतन बन जाए, है नीम के लिए कितना प्रयास किया जाए कि वो मीठी हो जाए, तो स्वभाव में किसी की चलती नहीं ऐसे, और वो संस्कारों को निरर्थक करने वाला है, इस योग्यता को स्वभाव धर्म कहते हैं। अभी दूसरा पॉइंट, इसी प्रकार आत्मा के पर्याय स्वभाव की ऐसी योग्यता है कि उसे संस्कारित किया जा सकता है। इसमें भी मर्यादा है, पर्याय का अनित्य स्वभाव नित्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अनित्यता वो भी त्रिकाली धर्म में शामिल होता है, वो त्रिकाली स्वभाव, वो कांटे की नोक है, लोहार की नोक नहीं, बाण की नोक नहीं, ख्याल में आए ना। यानी जो पर्याय होने वाली है उसके अनुकूल प्रयास भी किए जा सकते, ये मुख्यतया संसारी जीवों की तरफ से ये बातें हैं, क्योंकि पुद्गल में तो वो बेचारा क्या प्रयास करेगा, और हम जो प्रयास करेंगे पुद्गल के लिए वो निमित्त वाले समवाय में जाएगा, हमारे योग और उपयोग काय में जाएंगे। घड़ा बनाने में पुरुषार्थ कौन करता है, कुमार के माटी, हमें ऐसा लगता है पुरुषार्थ तो अपन को करना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए अपने को पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना, किस्मत में होगी तो मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें करना पड़ेगा ना। ये बहुत स्थूल भाषा है, एकदम से मैं असत्य कहने की रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन स्थूल भाषा है,
सत्य है सत्य है,
स्थूल सत्य, जनपद सत्य, 10 प्रकार के सत्य धर्मों में एक जनपद सत्य आता है, है? वास्तव में वो तुम्हारा योग और उपयोग वो पुरुषार्थ नहीं है, किसमें, पैसा कमाने, वो क्या है, वो निमित्त, अनुकूल बाह्य पदार्थ को निमित्त, तो तुम उसके लिए बाह्य हो गए ना। पैसे का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का कार्य किसमें होगा, तुम में होगा कि पैसे में होगा, वो पैसे में होगा, तो पुरुषार्थ कहाँ होगा उसका, हम ही ठेकेदार बने पुरुषार्थ के। अरे जड़ में चेतन में सब में पुरुषार्थ होता है, अज्ञानी ज्ञानी सब में पुरुषार्थ होता है, ख्याल में आया ना, तो जैसा कार्य है उसके अनुकूल पुरुषार्थ होता है। खैर, तो उसके अनुकूल प्रयास भी किए जा सकते हैं, किसके अनुकूल, पर्याय को संस्कारित करने के। ये जो इतनी बाल संस्कार शिविर लगाओ, किताबें छपाओ, वातावरण अच्छा बनाओ, जैसे अपने यहाँ ये प्रयास करते हैं ना अपन, तो ये इस धर्म के प्रताप है। ये सर्वथा निरर्थक नहीं होता है, एक बात समझ लेना, इसमें भी वो जो पर्याय जैसी होने वाली होती होती तो वैसे ही है, और उसमें तुम्हारे प्रयत्न यानी इच्छा और योगों का व्यापार अगर वैसा हो गया तो अनुकूल निमित्त कहा जाएगा, नहीं हुआ तो कहेंगे वो पर्याय भैया वो जैसी उसकी योग्यता से होनी थी वैसी, खुद की, दूसरे की तो बात ही छोड़ो, बच्चों में संस्कार डालने की बात छोड़ो, अपने संस्कारों की बात करो, अपने भीतर जो भी अनिष्ट विकल्प आते हैं पांच इंद्रिय के विषय जाल के, हम प्रयत्न करें उन्हें हटाने का, और उसके सुकाल में होने की योग्यता होगी तो कोई माई का लाल हटा नहीं सकता, और नहीं होगी तो कोई ला नहीं सकता, वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है। फिर भी जगत जो है, अपन संसारी जीव निचली भूमिका वाले हैं, विकल्पों की भूमिका वाले हैं, ख्याल में आए ना, तो उपदेश में ऐसी करने की भाषा होती है, उसके बिना उपदेश संभव नहीं। पुरुषार्थ वाला समवाय ही ऐसा है जिसे उपदेश में स्थान मिलता है। स्वभाव में क्या उपदेश दे रहे, स्वभाव को जानने का उपदेश दे, तो स्वभाव को जानना पुरुषार्थ। नियति को जान, काललब्धि को क्या उपदेश दे रहे, काललब्धि ले आओ जल्दी, इसलिए टोटल मंजिल लिखा किचु वस्तु नहीं, यानी उसमें हमारा प्रयत्न नहीं चलता, हम चेंज नहीं कर सकते, ऑन आर को हम बदल सकते, यानी चार समवायों में कुछ भी प्रयत्न करने की गुंजाइश नहीं है, उनमें चेंज नहीं हो सकता, ख्याल में है ना, तो नहीं है ऐसा निर्णय करना, उसका नाम पुरुषार्थ। गजब बात, अकर्तापने का उपदेश देना है कर्तापने की भाषा में, जैसे निर्णय करो, तो ये निर्णय करना इसमें कर्तत्व तो नहीं आया। अच्छा, ज्ञाता दृष्टा हो जाओ तो ज्ञाता दृष्टा पर्याय नहीं है, वो वैसा हो जाए यानी उस पर्याय को करने का विकल्प आया कि नहीं आया, कहा नहीं है कर्तत्व, पर्याय है तो कर्तत्व तो है ही, कर्तापना वो तो उसके बिना बात बनेगी नहीं, अगर नहीं करनी, करना कुछ नहीं, करना कुछ, अरे नहीं करना में वो दशा भी करने रूप होती है, अक्री यानी वितराग भाव से जानो, लिखा था ना वितराग भाव से जानो, तो वो भी एक कार्य होगा, लेकिन उसका स्वरूप कैसा है कि उसमें न तो कर्तत्व की वासना है न कर्तत्व का विकल्प। एक दो पॉइंट और लेते हैं, ये हो गया, मैंने कह दिया किसी भी वस्तु का मूल स्वभाव बदला नहीं जा सकता, जड़ चेतन नहीं हो सकता, चेतन जड़ नहीं हो सकता। चौथा, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होकर सिद्ध बन सकता है, ये अस्वभाव धर्म का स्वरूप है, यानी उसने जो उसके लिए जो भी व्यवहार पुरुषार्थ करें, निश्चय पुरुषार्थ कहें, जो भी प्रयत्न कहें, वो उसने उस पर्याय में किए हैं, उस पर्याय के लिए। अस्वभाव अर्थात संस्कारों की सार्थकता करने वाला धर्म, ये भी सुनना ध्यान से, मार्मिक बात मोतीचंद भाई, धर्म का नाम क्या है, अस्वभाव, और धर्म किसे कहते हैं, वस्तु के स्वभाव, तो अस्वभाव नाम का भी धर्म है आत्मा, नाम अस्वभाव दिया है उत्तरकाली से भिन्न बताने के लिए। अस्वभाव अर्थात संस्कारों की सार्थकता करने वाला धर्म, यह भी योग्यता रूप होने से स्वभाव रूप है, फिर भी त्रिकाली स्वभाव से भिन्न बताने के लिए इसे अस्वभाव धर्म कहा गया है, यानी ये अस्वभाव नाम का स्वभाव है। ऐसे ही ना, अकर्ता में कर्ता है, निष्क्रिय की सक्रियता, क्या बोला, वो कायदा सक्रिय है भाई, वो तो निष्क्रिय है, अरे है ना, कल था आज है कल रहेगा, काल के त्रिकालवर्ती प्रवाह में वो भी अपने त्रिकाल में रहेगा, उसका होना यही उसकी सक्रियता है, में उत्पाद रूप सक्रियता जुदी है, और निष्क्रिय का होना वो ही उसकी सक्रियता है। एक द्रव्य पर किसी अन्य द्रव्य का प्रभाव पड़ने की बात तो दूर रही, इस स्वभाव ने की महिमा देखना, द्रव का मूल स्वभाव अपनी मलिन और निर्मल पर्यायों से भी प्रभावित नहीं होता। पर्याय ना चार भावों की लहरें, उपशम है, क्षय उपशम है, छायक है, उदय है, रहने दो, समुद्र तो अखंड अखात जैसा है वैसे ही है। ये स्वभाव धर्म की योग्यता है। पर्यायों को संस्कारित किया जा सकता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तनशील तो वे हैं, उनमें परिवर्तन माने उनके स्वकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो पर्याय मिथ्यात् भाव लेकर होने वाली है वो मिथ्यात् भाव लेकर ही होएगी, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। ये पिछली पर्याय की अपेक्षा वो जुदी है इसलिए उसमें परिवर्तन हो गया, ऐसा पिछली पर्यायों की अपेक्षा उपचार से कहा जाता है। पर्याय तो अपने सुनिश्चित क्रम में ही होती हैं। जो पर्याय जब होती है तब उसके अनुरूप बाह्य प्रयत्न भी होता है। ये बड़ा स्थूल अज्ञान का प्रश्न है, हम करेंगे नहीं करें तो हम क्यों करें, हाथ में हाथ धरे बैठे रहें, बैठ जाओ तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। तो उन बाह्य प्रयत्नों को संस्कार कहते हैं। स्वभाव और स्वभाव नाम के एक धर्म की चर्चा हुई, बाकी चर्चा अपन शाम को करेंगे, अभी यही विराम देते। जिनवाणी स्तुति।